नहीं थी। ओके, हरे कृष्ण। तो श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, कैंटो 8 वर्स 8 और चैप्टर 8 और 9 वर्स, वर्स। हरे कृष्ण। चक्रु स्पृहां सर्वे सासुरासुरमानवा महिमा क्षिप्ता चेतसः। शब्दार्थ, तस्यां उसके लिए, चक्रु की स्पृहां इच्छा, सर्वे हर कोई, सासुरा असुरा मानवा देवता असुर तथा मनुष्य समेत, रूप औदार्य अपूर्व सौंदर्य तथा शारीरिक स्वरूप के द्वारा, वय तारुण्य वर्ण रंग महिमा यश अक्षिप्ता शुद्ध चेतसा मन माने। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक स्वरूप, गठन, तारुण्य, रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहां तक कि देवता असुर तथा मनुष्य, उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों की उद्गम है। तात्पर्य में, इस संसार में ऐसा कौन होगा जो धन, सौंदर्य तथा इन ऐश्वर्यों से मिलने वाले सामाजिक सम्मान का भूखा ना हो। लोग सामान्यतः भौतिक भोग, भौतिक ऐश्वर्य तथा उच्च कुलीन व्यक्तियों की संगति चाहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, भौतिक भोग का अर्थ है धन, सौंदर्य तथा इनसे मिलने वाला यश, जो धन की देवी श्री कृपा से ही प्राप्त, श्री की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। किंतु धन की देवी कभी अकेली नहीं रहती, जैसे कि पिछले श्लोक में भगवत परा शब्द से सूचित होता है। वे भगवान की संपत्ति हैं और उन्हीं के द्वारा भोग्य हैं। यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें नारायण के साथ रखे, क्योंकि वे स्वभाव से भगवत परा हैं। जो भक्त सदैव नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, अर्थात नारायण परायण होते हैं, उन्हें निश्चय ही धन की देवी की कृपा प्राप्त होती है। किंतु जो भौतिकतावादी उन्हें निजी भोग के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, फिर निराश होते हैं। उनकी यह नीति ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ, सुप्रसिद्ध असुर रावण रामचंद्र की को लक्ष्मी अर्थात सीता जी से विहीन करके विजयी बनना चाहता था, किंतु परिणाम उल्टा निकला। भगवान रामचंद्र ने निसंदेह सीता को बलपूर्वक भगवान रामचंद्र ने निसंदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया है और रावण और अपने समूचे ओके यहाँ पर शब्द शब्द ध्यान दे, यहाँ पर रावण आना चाहिए था। रावण ने निसंदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया और अपने समूचे भौतिक साम्राज्य सहित विनष्ट हो गया। धन की देवी सबके लिए, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं, काम में है। किंतु मनुष्यों को यह समझना चाहिए कि धन की देवी केवल भगवान की ही संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति धन की देवी का तब तक कृपा पात्र नहीं बन पाता जब तक कि वह उनकी तथा परम भोक्ता भगवान दोनों की संतुति नहीं करता। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशता हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज किस भागवतम क्लास में और प्रसंग चल रहा है। अध्याय का नाम है क्षीर सागर का मंथन और कथाएं बहुत पुरानी हैं, सबने सुनी हुई हैं, लेकिन इस मंथन की कथा में अब प्रसंग आ रहा है कि मंथन शुरू हो गया और अब इसमें से काफी चीजें निकलना शुरू हो गई और इसमें ऐरावत हाथी भी निकला। सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल विष निकला। और उससे भी पहले जब बातचीत चल रही थी कि कैसे इसका मंथन करें, क्षीर सागर का मंथन, भाई मटके में घड़ों में तो हम लोगों ने पुराने कभी जमाने में देखा होगा, क्या होगा, उसके अंदर एक लकड़ी डालते हैं और रस्सी से खींचते तो इजीली हो जाते हैं। शहर के लोगों ने सर नहीं देखा होगा या नहीं किया होगा, लेकिन गांवों में हुआ है ऐसा। कितने लोगों ने किया है? अभी किए वाले लोग हैं, वेरी गुड। कोई कितने लोग अभी भी कर रहे हैं ऐसा? थोड़ा हाथ ऊंचा करें। ओके, नहीं घर में ग्लास के डोल के अंदर ऐसे नहीं वो वाला नहीं, वो मटका रखकर उस रस्सी के साथ ऐसे वाला है ना, वो तो हम भी कर लेते हैं दूध में चीनी मिलानी है तो भी कुछ करना, ऐसे नहीं, वो जो प्रॉपर होता है। तो अब होता नहीं है शहरों में, क्योंकि ना तो गायें बची हैं, घर में गायें बांधते नहीं है, कुत्ता बांधते हैं, तो ये सब तो चलेगा नहीं, है ना। लेकिन हम लोग एक दिन जयपुर गए थे तो हमने देखा वहां पर अभी भी कल्चर है, जयपुर के शहरों में भी, मेन पिंक सिटी वगैरह में नहीं, थोड़ा सा अंदर जाके लोगों ने घर के बाहर लगभग 10x10 फीट का एरिया मिट्टी से भर के रखा हुआ है और वहां पर रोज अपने मतलब अपने घर में सबके घर के आगे गायें बंधी हुई थी। वो देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि आज भी लोग गाय की सेवा को, गाय की पूजा को, गाय के दूध को पूरा महत्व देते हैं। तो जिनके पास कमी, दिल्ली में भी मैंने पूछा था किसी से कि क्या दिल्ली में अलाउ है गायें, तो उन्होंने बोला कि अगर आप इसके लिए प्रॉपर स्थान रखते हैं, कवर रखते हैं, इस तरह से रखते हैं तो शायद अलाउड है, ऐसा भी मना नहीं किया गया। तो अगर कोई रखना चाहे तो रखना चाहिए उसको पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ। तो यहां पर इस प्रसंग में आज जो है जब बातचीत चली कि भाई मंथन कौन करेगा समुद्र का, तो पर्वत नीचे भगवान ने कश्यप अवतार लिया, वासुकी भी आए और सबने खींचना शुरू किया, और क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये हो इसलिए देवताओं को पहले समझा के रखा था कि असुर जो भी डिमांड करें उनको दे देना, क्योंकि काम होना चाहिए। तो शुरुआत में देवताओं ने जो हिस्सा पकड़ा सांप का वो फेस वाली साइड पकड़ा, और असुरों ने कौन सा पकड़ा, तो असुरों को लगा ये क्या दे दिया हम लोग, ये कौन सी इनऑस्पिशियस अशुभ चीज पकड़ा दी, पिछला हिस्सा तो क्या होता है दूषित होता है, अशुभ होता है, और वैसे भी जब खींचेंगे तो अगर आपने कभी रस्साकशी करी हो तो अगर पीछे का छोर पतला हो तो हाथ से वैसे फिसल जाएगा, है ना, तो लोग बोलेंगे देखो इनको आता नहीं। तो हमें कौन सी जगह चाहिए, फेस वाली साइड चाहिए, तो फेस वाली साइड उन्होंने मांग ली। उनको लगा देवता जो कर रहे हैं जरूर इसमें कोई बात होगी। कई बार ईर्ष्या द्वेष होकर तो कई बार लोग वो चीज करना चाहते हैं जिसे दूसरा व्यक्ति लेना चाहता है, जिसे ईर्ष्या द्वेष, चाहे वो गलत चीज ही क्यों ना ले रहा हो, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने वो स्थान बदला और अब जो है मंथन शुरू हुआ और चीजें निकलना शुरू हुई बाहर। ऐरावत हाथी निकला, अब लक्ष्मी जी निकल आई, है ना। अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई पिछले श्लोक में, जो कि नारायण पारायण है, और आगे के श्लोक में पता चलेगा इनके रूप का वर्णन हो रहा है कि कितने जो है उनके अंदर ऐश्वर्य है, कितना सुंदर है उनका, तो इस बात का वर्णन हो रहा है और सभी लोग उनसे आकर्षित हैं। आज के श्लोक में बोल रहे हैं उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक स्वरूप, तारुण्य, रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहां तक कि देवता, असुर तथा मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। और किस लिए करने लगे? इसलिए आकृष्ट है क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों की उद्गम है। कि अगर रमा देवी जी आ गई हमारे पास तो ये सब कुछ प्रदान कर सकती हैं, धन धान्य ऐश्वर्य। बताया जाता है लक्ष्मी जी के भी 8 रूप हैं, अष्ट लक्ष्मी भी बोलते हैं, तो उसमें धान्य की हैं, धैर्य की हैं, धन की हैं, संपदा की हैं, तो 8 लक्ष्मी अलग अलग हैं, और महालक्ष्मी जी भी हैं। तो ये जो लक्ष्मी जी हैं आज समुद्र से निकली हैं, ऐसा नहीं कि आज ही प्रकट हुई हैं, इससे पहले जो है नारायण जी या विष्णु जी बैचलर घूम रहे थे, है ना, उन्होंने कहीं मंदिर में नाम लिखवा रखा था रिश्ते ही रिश्ते कि जी कोई हो तो बताना, उम्र इतनी, कद गाठी इतनी, जी जॉब करता हूं, तो कोई ऐसा नहीं था। लक्ष्मी जी एटर्नल कॉन्सेप्ट हैं भगवान विष्णु की, लेकिन इस लीला में आज वो यहां से प्रकट हुई हैं और अब सारे लोग देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लेकर, है ना, जैसे सीता स्वयंवर हुआ था, लेकिन उसमें पता था कि किसको पहनानी है, जिन्होंने धनुष तोड़ दिया था, मृत्युंजय चढ़ा दी थी, लेकिन यहां पर सबको लग रहा था कि लक्ष्मी जी अगर हमें प्राप्त हो जाए सबकी कामना, और लक्ष्मी क्यों ना प्राप्त, किसको पसंद नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बात भी शुरू कर रहे हैं कहां से कि किसको पसंद नहीं है धन धान्य, किसको पसंद नहीं है मान सम्मान, सबको सबको पसंद आए। अब लक्ष्मी जी ने चलना शुरू किया, आगे पसंद में आएगा, और सारे लोग देख रहे हैं। मैं हैरान तब हुआ जब इससे पहले के कुछ श्लोकों में जब हलाहल विष को पीना था तो शिव जी को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया, और परपट में प्रभुपाद जी कुछ नहीं लिख रहे, उससे पहले एक परपट में लिख दिया ये जो शिव जी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है ये एक्चुअली पुरुष अवतार भगवान को किया जा रहा है, खत्म है ना। कहीं लोग ये पढ़कर ये ना समझे कि शायद शिव जी ही परम भगवान है, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा और अन्य देवता उस हलाहल विष को पीने के लिए शिव जी को एनकरेज कर रहे कि सर आप ये प्लीज आगे आकरिए। वास्तव में जब भगवान इतने बड़े बड़े अवतार लेकर ये सब कर सकते हैं, पर्वत को लाना, नीचे कश्यप के रूप में आना, तो क्या वो हलाहल कूट विष जो निकला वो नहीं पी सकते थे? उसके लिए अलग से पाइपलाइन बिछाकर अरब कंट्री में नहीं भेज सकते थे? लेकिन भगवान ने क्या किया कि भाई अगर सारी चीज मैं करूंगा तो फिर ये जो इतने सारे मैंने रखे लोग सेवा के लिए, इनका कब नंबर आएगा? फिर ये लोग ये पूछेंगे कि मेरा नंबर कब आएगा? तो अब शिव जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि सर आप ये सब कुछ किस सेंस में कर रहे हैं कि जो शिव है मंगलकारी शिव वास्तव में ये कोई जीव तत्व तो है नहीं, ये तो विष्णु तत्व का ही एक्सपेंशन है। और विष्णु तत्व में भी हम देखते हैं कि कितने विष्णु और कितने अवतार, तो कई बार इस तत्व को समझने भी जो है दिमाग चकरा जाता है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं विशेषकर इस्कॉन के भक्तों से कि आप कृष्ण को ही की सुप्रीम मानते हो, जबकि हमने विष्णु पुराण पढ़ा है, सारे के सारे अवतार कहां से होते हैं? विष्णु से होते हैं। अब डिवोटी ने जो सुना है या जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो प्रभुपाद जी ने जो कहा है उसको बोलते हैं, रिपीट करते हैं और कन्विंस कर भी देते हैं, क्योंकि भक्ति में वही लोग ज्यादा आते हैं जो पुराने कन्विंस्ड हैं, मतलब पूर्व जन्म की भक्ति लेकर आए हैं या उनके सारे कंसेप्ट क्लियर थे, और उस तरह के जो रजोगुण में है जो अभी बहुत इंक्लूसिटिव है, हर चीज में प्रश्न करते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होती है। तो कई बार ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार कृष्ण, बलराम और भगवान के 3 पुरुष अवतार और फिर इतने सारे अवतार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इन सब अवतारों में ये सब अगर विष्णु तत्व हैं या फिर अवतार लेते हैं कृष्ण बलराम के रूप में भी तो आए, तो ये क्या चक्कर है ये सब? तो इसको समझने के लिए, इस तत्व को समझने के लिए तो समझने के किससे? भगवान की जो निकृष्ट एनर्जी है कौन सी? माया शक्ति जिसे संसार बनाया, या भिन्ना प्रकृति अष्टधा, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुख। ये जो भिन्न प्रकृति है निकृष्ट एनर्जी जिसे इन्फीरियर एनर्जी भी कहते हैं, ये सारा संसार उससे बनाया भगवान ने। उसमें क्या क्या आते हैं? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन आठ तत्वों से हम निर्मित हुए हैं और ये संसार निर्मित हुआ है। ये सारे के सारे मैटर है, मटीरियल एलिमेंट्स हैं। माइंड भी मैटर है, इंटेलिजेंस भी जो हमारी सो कॉल्ड यहां से अगर अप्लावित है तो वो भी मटीरियल मैटर है। तो हम जब ये बात करते हैं कि विष्णु तत्व को कैसे समझें या आत्मा को कैसे देखें, आध्यात्मिक तत्वों को कैसे समझें, तो इस जिसने भौतिक, जिसका मेड ही भौतिक है सारा, इन्फीरियर, तो सुपीरियर को कैसे समझ सकता है? भाई आंखें मिली हैं, लोग बोलते हैं आओ इस संस्था में जा रहे हो, कब से जा रहे हो, भगवान देखें? नहीं, आओ हम भगवान दिखाएं। तो भगवान दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल क्या है, निराधार है, झूठ है। आप इन पांच तत्वों की बनी हुई आंखों से कैसे भगवान को देख सकते? इन पांच तत्वों में आप हवा को तो देख नहीं सकते, हवा इन्हीं पांच तत्वों में से है, इसको फील कर सकते हो। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो को तो भूल ही जाइए, जो सटल है। तो आप जो बियॉन्ड इन एट एलिमेंट्स है, कौन? द सुप्रीम लॉर्ड या उनकी उनके अंश आत्मा या वो आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति कैसे देख लेंगे? समझ पा रहे? या फिर कैसे समझ लेंगे? अचिंत्य बोला गया, इनकंसीवेबल, नहीं समझ सकते इन चीजों। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं भक्ता माम अभिजाने, भक्ति के द्वारा। और भक्ति क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। अगर भक्ति के अंगों का पालन करेंगे तो उन तत्वों को समझ सकते हैं, या जो कंटामिनेशन हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर है वो अनकवर हो जाएगी और स्पिरिचुअल टॉपिक्स को समझ पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे, तब जाके जब कृपा होगी। अन्यथा पांच तत्वों के इंद्रों से नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते इन चीजों को। तो हम लोगों ने आज तक केवल यह देखा है कि हम एक व्यक्ति हैं, एक पर्सन है। वो एक व्यक्ति दो जगह पर नहीं रह सकता, रह सकता है क्या? एक व्यक्ति चार जगह पर नहीं रह सकता। जब कुछ योगियों को पता चलता है कि ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है कि एक योगी जब सिद्धि प्राप्त करता है वो अपनी जगह नौ या आठ जगहों पर अपने को विभक्त कर सकता है, अपने को आठ रूप में एक्सपेंड कर सकता है, तो हाथ उठाएगा तो सब लोग हाथ उठाएंगे, तो सारी एक्टिविटी जैसे कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा आठ नौ तक बस, ज्यादा नहीं। लेकिन हम लोगों ने आज तक ये देखा है कि हमें एक आदमी एक टाइम पर एक ही काम करता है, एक व्यक्ति एक ही जगह उपस्थित है, वो दूसरी जगह उपस्थित नहीं है। इसलिए जब भगवान की बात करते हैं, भगवान के अवतारों की बात करते हैं, उनके विशेष एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो हमें समझ नहीं आता। तो उसको समझने के लिए हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हम ही लोग हैं, घर पर अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, अपनी वाइफ के साथ बात करते हैं, यही व्यक्ति जब सुबह उठता है तो ट्रैक सूट पर नजर आता है और दौड़ लगाता है, पार्कों में अनुलोम विलोम करता नजर आता है। यही व्यक्ति जब वापस आता है तो उसको लगता है कि मैं स्नान कर लूं तो दूसरे गमछे में और वैसे नजर आता है। यही व्यक्ति जब स्नान करने के बाद अपने धोती कुर्ता पहन के घंटी बजा के मंदिर में पूजा करता है तो तीसरा आदमी नजर आता है। यही व्यक्ति अपने उन कपड़े को चेंज कर जो रात को आप उसको मिले कपड़े, पैंट शर्ट पहनता है, टाई लगाता है, अब ऑफिस जाने की तैयारी है तो नया दिखता है। उसके बाद ऑफिस में उसका बिहेव चेंज हो जाता है, हर व्यक्ति के साथ, गार्ड के साथ बिल्कुल ऐसा रहता है, ऑफिस में अपने कुलीग्स के साथ दूसरे ढंग से रहता है, बॉस के साथ अलग रहता है या बॉस अलग ढंग से व्यवहार करता है। शाम को यही व्यक्ति जब वापस आता है तो फिर कपड़े चेंज करता है और क्लब में जाता है खेलने के लिए, फिर दूसरा चीज चेंज करता है, या फिर उसका टाइम हो जाता है 8 बजे, अब उसको जाना किसी पार्टी में तो वो अपना लुंगी उंगी नहीं पहनता अभी, अब उसको छोटे कपड़े पहनने होते हैं, उसको मालूम है उधर ऐसे अलाउ नहीं करेंगे, तो उस तरह से नजर आता है, दूसरे ढंग से बिहेव करता है। फिर यही आदमी जब रात को सोने की तैयारी करता है तो अपना नाइट सूट पहनता है और इसका फिर से नया सूट। तो एक ही आदमी एक दिन में कई प्रकार के व्यवहार के साथ, कई प्रकार के वस्त्रों के साथ अलग अलग पर्सनैलिटी नजर आती है। लेकिन भगवान क्योंकि क्या है, भगवान है, सारी शक्तियां उनके अंदर हैं, तो वो क्या करते हैं, इन सब कामों को करने के लिए, इस संसार के कामों को करने के लिए या सृष्टि करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए, लोग भक्तों के साथ लीला करने के लिए अपना विस्तार करते हैं। माधुर्य वाला रूप अलग है भगवान का गोलोक धाम में, अभी सृष्टि करनी है तो बलराम जी के रूप में एक्सपेंशन करते हैं। मतलब भगवान के पास शक्ति है इसलिए वो अपना विस्तार कर रहे हैं, हमारी तरह नहीं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम, अलग अलग व्यवहार, नहीं। इधर क्या कर दिया, क्योंकि मैं भगवान हूं, स्वराट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, सारी शक्ति मेरे अंदर है, तो मैं अपने को विस्तार करता हूं और फिर अलग अलग काम को अलग अलग विस्तार के साथ ही संपन्न करते हैं। तीन विष्णु का अवतार में आते हैं, एक विष्णु समुद्र में लेटे हैं, कारण दक्षाय विष्णु, उनका खाली काम है ब्रह्मांड को निकालना। अब वही क्या कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा एक्सपेंशन था शिरोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, और फिर जब जब धर्म की हानि होगी और जिस प्रकार के धर्म की हानि होते समय जिस प्रकार के अवतार की रिक्वायरमेंट है, मैं वैसा वैसा भी अवतार लूंगा। तो ये इतने सारे अवतारों को क्या समझना है, ये सारे हैं विष्णु तत्व, एक ही व्यक्ति है लेकिन अपना अलग अलग काम को पूरा करने के लिए अपना विस्तार किया हुआ है अलग अलग रूप में, कश्यप रूप में, वराह रूप में, मीन अवतार, मोहिनी अवतार, जैसे जैसे टाइम सर्कमस्टांस एंड प्लेस के अकॉर्डिंगली जिस तरह की नीड है भगवान वैसा वैसा अवतार करते हैं। हमारे को बिल जमा कराना, हमें कुछ करना, हम ही जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, स्कूटर लेके जाते हैं, वैसे जाते हैं, हमें ही करना सारा काम, लेकिन भगवान को भी सारा काम खुद ही करना है लेकिन अपना विस्तार करके। और यही भगवान कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति को श्रीमती राधा रानी, उनका श्रीमती राधा रानी का केवल काम है हलादनी शक्ति है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही देखनी है, क्योंकि वो भगवान को हलाद देने के, आनंद देने के लिए भगवान ने अपनी शक्ति को बाहर एक रूप दिया हुआ है। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को किस प्रकार से अलग अलग मानसिकताओं के द्वारा जितने तरह से विचार आ सकते हैं कृष्ण को या मुझे राधा रानी को, उतनी तरह से उनको सर्व करने के लिए अपना विस्तार करती है। तो गोलोक वृंदावन धाम में जितनी भी गोपियां हैं, मंजरियां हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार है। अगर कृष्ण को पति पत्नी वाला खेल खेलना है तो द्वारका में वो रुक्मणी और सत्यभामा और इस प्रकार 16,108 रानियों के साथ खेलते हैं, उन्होंने अपना विस्तार वहां किया। तो श्रीमती राधा रानी ने अपना विस्तार रुक्मणी इन सबके उसमें किया। जैसे कई बार लोग पूछते हैं शादी तो रुक्मणी से हुई थी, खड़ी राधा रानी क्यों होती है ना, तो यहां पर कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी की अंतरंगा शक्ति है और पूर्ण है, पूर्ण अवस्था में भगवान को सर्व कर रही है, ऐश्वर्य भाव में नहीं, माधुर्य भाव में। इसलिए द्वारका में कृष्ण के साथ रुक्मणी मिलेंगी लेकिन वृंदावन में कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी होंगी। और फिर जब यही विष्णु, यही भगवान कृष्ण राम के रूप में आते हैं तो यही श्रीमती राधा रानी उनके साथ सीता मां के रूप में होती है। यही महाविष्णु है तो वो वहां महालक्ष्मी है, और विष्णु अवतार है और अवतार लिए तो उसमें वही लक्ष्मी अपना विस्तार करती है। और इस प्रकार जब भगवान विष्णु इस संसार में एक विशेष काम के लिए, संहार के लिए अपना और विस्तार करते हैं या जनरेट करनी है लिविंग एंटिटीज, माया का संग करना है, तो क्या करते हैं, अपना विस्तार शिव के रूप में करते हैं, एक अलग तत्व प्रकट करते हैं। और जब वो उस रूप में आते हैं तो यही लक्ष्मी जी पार्वती के रूप में प्रकट होती है, माया देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में। और इस प्रकार फिर जो और अवतार होते हैं या और चीजें हैं देवी देवताओं की या देवताओं का, ये भी सब उन्हीं के अवतार हैं। फिर आगे चलकर यहां तक ये भी कहा गया है कि पुरुष और स्त्री इन्हीं सबके एक्सपेंशन से संसार में भी। तो अब श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं और सब चाहते हैं हमें लक्ष्मी प्राप्त हो। तो यहां पर लक्ष्मी एक शब्द आते ही तुरंत हमें हरे हरे नोट दिखाई देते हैं, है कि नहीं। लक्ष्मी बोलते ही कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी ऐसे धन देती हुई भी शायद ज्यादा ना दिखाई देती हो, महात्मा गांधी 1000 का नोट पिंक कलर का वो ज्यादा दिखाई देता है, स्मरण होता है, क्योंकि चेतना चिंतन केवल लक्ष्मी का मतलब ही वही है, लेकिन जो भक्त हैं उन्हें मालूम है लक्ष्मी जी कौन है, उन्हें पता है लक्ष्मी जी का स्वरूप क्या है। तो यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस संसार में कौन होगा जो धन सौंदर्य और इन ऐश्वर्यों के मिलने पर सामाजिक सम्मान का भूखा ना हो। धन मिलता है तो सामाजिक सम्मान की भूख भी बढ़ जाती है, भाई अगर मेरे पास है तो दिखाऊं क्यों नहीं। और लोग किसको अप्रिशिएट करते हैं, जिसके पास धन अधिक हो, जिसमें मान सम्मान मिल रहा हो उसको, और मान सम्मान में उसकी बढ़ोतरी होती है। तो जो ये मान सम्मान की भूख है ये धन और ऐश्वर्य के द्वारा मिलती है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युद्ध में कि मारो इन सबको, युद्ध करो, अपना कर्तव्य पूरा करो। अर्जुन कह रहे हैं भगवान अगर मैंने अपने रिलेटिव्स को मार दिया, ये सारा राज्य मैंने जीत भी लिया, तो दिखाऊंगा किसको, अप्रिशिएट कौन करेगा, क्षत्रिय मर गए। किसको दिखाऊंगा, मेरे सारे लोग अपने तो हैं। हम लोग जो धन कमाते हैं, जो ऐश्वर्य कमाते हैं, जो अपुलेंस हमारे पास होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य यही तो होता है। माता पिता बचपन से यही तो बोलते हैं, बेटा कुछ कर ले, पढ़ ले, लोग क्या कहेंगे, देख तेरी चाची के लड़के ने क्या कर दिया, देख तेरे ताऊ के लड़के ने क्या कर दिया, तू कब करेगा, कंपेयर करते ना। तो शुरू से रिलेटिव से कंपेयर करते कि तू कुछ बन जाएगा तो लोग कुछ बोलेंगे, नहीं बनेगा तो लोग थू थू करेंगे। तो मतलब कुछ बनना कुछ करना, पहले तो उसको बेसिक नीड के लिए, अगर नहीं कमाएगा तो भूखा मरेगा, अच्छा अगर कमाएगा और ज्यादा नहीं कमाएगा तो लोग क्या बोलेंगे, कुछ किया ही नहीं, ये तो सक्सेसफुल ही नहीं है। तो इस प्रकार कंपेयर कर करके हम लोगों को प्रवोक करते हैं, और प्रवोक होकर व्यक्ति भी क्या सोचता है, यस जब तक मेरे पास धन नहीं होगा तब तक मैं माना नहीं जाऊंगा कि समाज में सक्सेसफुल हूं। तो इसलिए हम लोगों की चेतना हमेशा बचपन से ही पूरा का पूरा एनवायरमेंट कंटामिनेटेड है। इसलिए बताते हैं जब माता पिता अगर शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल रहे, जीवन ठीक ढंग से नहीं चल रहे, एंजाइटीज हैं, लड़ाई है, हस्बैंड भी ऑफिस, वाइफ भी ऑफिस, फिर घर में काम किसी तरह निपटाया, बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष, कॉम्पिटिशन की भावना, मन हमेशा उद्वेगित, और किसके पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मी के पीछे। कौन सी वाली लक्ष्मी, रूपा जी बता रहे, जैसे लक्ष्मी का वाहन क्या है, और दूसरा बोलते हैं लक्ष्मी जी बड़ी चंचला है। चंचला क्यों बोलते हैं, कि जो लोग खाली लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो चंचला लक्ष्मी आती है और उसका मन हमेशा चंचल रहता है, फिर उद्वेगित रहता है, कहां रखूं, कहां संभालूं, को ले ना ले, कुछ छीन ना ले, उद्वेगित रहता है, चंचल रहता है उसका मन हमेशा। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो उसके बाद वो ढंग से सो नहीं पाया, कभी परेशान रहा, खुश होता था उनके सौंदर्य को देख के, हाँ एक दिन विवाह कर लूंगा, लेकिन विवाह नहीं हो रहा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, सीता जी मान नहीं रही है, अलग अलग रूप लेकर उनके सामने आ रहे हैं, कभी राम का कटा हुआ गला दिखा दिया, कभी अपना रूप बदल लिया, लेकिन वो एग्री नहीं कर रही है। कौन सीता माता, छाया है, चंचला है, लेकिन उसके बाद भी वो उद्वेगित रहा, परेशान रहा, पूरी के पूरे रावण की लंका सोने की कितना अपुलेंस था उसके पास, बस एक गलती क्या कर दी कि स्वयं लक्ष्मी को अकेले भोगने का प्रयास किया, और हर्ष क्या हुआ, सदैव उद्वेगित रहा, हमेशा परेशान रहा। हम देख सकते हैं जिस जो भी धन के पीछे पड़ा है, जिसके पास भी धन है या जिसने बहुत इकट्ठा कर लिया, वो हमेशा उद्वेगित, फ्रस्ट्रेटेड और हाइपर नजर आएगा, कहां रखूं क्या रखूं। ऊपर से सरकार ने ऐसे सिस्टम कर दिए हैं कि अगर आपने छुपके छुपके यहां से इकट्ठा करके बाहर रखा था स्विस बैंक में, तो बताते हैं स्विस बैंक में पड़ा हुआ अमाउंट भी लोग यहां खा ही नहीं पाए, याद नहीं आया अकाउंट नंबर क्या था, पासवर्ड क्या था, बच्चों को बता नहीं पाए, वो वहीं जमा रह गया सब, उनका ही हो गया स्विस वालों का। और जिनका वैसे है, जिनको याद है, जिन्होंने लिखा हुआ है, वो उसको मंगा नहीं सकते, रूल्स एंड रेगुलेशन हाईफाई कर दिए, आप करो तो सही, एक ट्रांजेक्शन तो करो, अगले दिन ही पकड़े जाओगे। कई लोग बोलते हैं इसको उनका पैसा बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, अरे बाहर कहां जा रहा है, हर देश अगर यही बोलेगा कि बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, जा कहां रहा है। कुछ समय पहले जब हम जाते थे, 2-3 साल पहले लोगों के पास, हरे कृष्ण पूजी, जन्माष्टमी कुछ कीजिए, अरे इस्कॉन तो बहुत ऑपुलेंट है, इसमें सब कुछ है, तुम लोग की गाड़ी से आए हो, इस्कॉन के पास बहुत पैसा है, पहले इसलिए मना कर देते कि तुम्हारे पास तो पैसा है इसलिए हम क्यों दे, बाहर से बहुत आता है, इतने साफ सुथरे मंदिर कहीं देखे ही नहीं, मंदिर तो हमेशा मतलब कीचड़, लाल लाल पानी इधर उधर गिरा हुआ, टीके लगे पड़े हर जगह, बर्फी चिपकाई हुई है, ऐसे मंदिर नजर आते थे। जब तक प्यार में प्रसाद ना चिपके, काले ना हो जाए, बाहर ना निकले, थके ना लगे, मंदिर मंदिर नहीं है, मंदिरों की ये पहले वो हुआ करता था। अब वो ऐसी जगह आते हैं जैसे कि मॉल में आते हैं, ओह क्या मंदिर है, देखते रह जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर आप कैमरा लगाएं, जो लोग ताली बजाते आ रहे होते हैं, हरे कृष्ण ऐसे करते, उन्हें पता नहीं होता कि देखना क्या है, वो मंदिर देख रहे, डेकोरेशन देख रहे, फ्लावर देख रहे, वो भगवान को देखा भी नहीं तब तक बाहर निकल गया, वो बस ये देख रहा कि मैं जब बताऊंगा लोगों को मैंने क्या क्या देखा, आज मैं इस्कॉन गया, तुमने क्या क्या देखा, बड़ी सुंदर लाइन थी, बड़ा सुंदर प्रसाद था, बहुत अच्छी बात। फिर मैं अंदर गया, वो ऊपर क्या डेकोरेशन हो रही, फ्लावर तो इतने थे, दर्शन किए, अरे बस वो देख नहीं पाया किधर थे बट वो निकल गया बस तब तक वहां। लेकिन जो फेस्टिवल के अलग आते हैं, वैसे दिनों में आते हैं तो सुंदरता देखते हैं, सफाई देखते हैं, सफाई दिखती है, मतलब आप गंदे पैरों के साथ अंदर आते हैं, यहां साफ हो जाते पैर। कारपेट लगे पड़े गंदे पैर से आए थे, वो साफ हो गए आपके। आप घर जाके देखते हो, मैं नहाया नहीं था फिर भी पैर साफ है। जन्माष्टमी के दिन लोगों को वेलकम किया जाता है पाद प्रक्षालन कर चरण धुलाते हैं। व्यक्ति को पता नहीं होता अचानक पानी गिरता ठंडा ठंडा, कहता ही क्या है। देवता दो लोग नीचे बैठे हैं हाथ जोड़ के खड़े, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कहता क्या कर रहे हो भाई, तो पैर धुला रहे। वो पूरा मतलब मंदिर में धक्के मुक्के गाली और ये सब करने के बाद, अच्छा सामान ना खरीदो बाहर पूजा का, तो क्या बोलते हैं, अरे कहां से आ गए पूजा का सामान, तुम्हारे पूजा विफल हो जाएगी, इतना दूर से आए हो इतना लगा कर आए हो, यहां पूजा नहीं करोगे तो क्या होगा, जाओ तुम्हारा काम उल्टा हो। और अगर पंडितों को नहीं दिया वहां पर, इधर डालो उधर डालो इधर मारना, देखो उसको मालूम है कि मेरे से पैसा मांगने वाला है, कहते नहीं मुझे पता है सब पता है, पहली बार भी आया कहता मुझे पता है सब पता है। और फिर हर जगह डालने को बोलते हैं, तो बड़ा मुश्किल से बच बचा कर वो देखता है कि अरे मंदिर में आया हूं मैं, मंदिर में आने के बाद जो यहां का पुजारी है, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं, वो मेरी जेब के दर्शन कर रहा है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे आया हूं मैं और इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति को देख रहा हूं, उनका दर्शन कर रहा हूं मैं, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बहुत करीब खड़ा है, ये किस इंपॉर्टेंट चीज को देख रहा है, ये मेरे पैसे की तरफ नजर है इसकी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। तो कहते फिर इसको क्यों दू, इसका मतलब यही है भगवान असली है ना, कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया इसका मतलब ये। तो फिर उसको निकाल के देता 10 रुपए, दादा नहीं दूंगा, उधर भी 10 उधर बचा के ले जाता, कहता यस असली भगवान ये है जो मेरी जेब में। और जब यहां इन मंदिरों में आता है वो देखता है, अरे भाई कितना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर फ्लावर डेकोरेशन, भगवान का इतना सुंदर ड्रेस, आज का नया ड्रेस है, तो इतना सुंदर श्रृंगार भक्त लोग देखते हैं जब, और वो देखते हैं कि पुजारी यहां का, उसकी नजर मेरे पैसों पर नहीं है, उसकी नजर भी भगवान पर है। मैं कई बार कोशिश करता हूं 150 का देने की, प्रभु जी थोड़ा एक स्पेशल आशीर्वाद। स्पेशल क्या, वो कहता जी इकट्ठा देंगे जब होगा तब सब देंगे, है ना। तो पुजारी लोग देखते हैं कि लोग अपना जीवन समर्पित करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, उस लक्ष्मी का जो चंचला लक्ष्मी है या जिसके पीछे लोग पड़े हुए, उसका त्याग कर वो अपना शरीर मन वाणी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और वो धन से आकर्षित नहीं है, तो उसको लगता फिर चीज धन में इकट्ठा कर रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा हूं, खून पसीना एक कर रहा हूं, मुंह से झाग निकल आता है, जिसको मेरी सारी रिलेटिव्स, मेरे पड़ोसी मेरे घर वाले छीनना चाहते हैं, जो हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखता है, जिसको मैं बचपन से सीखा कि यही सब कुछ है, वो यहां पर आके पता चला इसकी अहमियत कुछ नहीं। इनके व्यवहार से पता चला, इन भक्तों के व्यवहार से, जो उस धन को चंचला धन जो था जो दूषित करने वाला था, उसको त्याग कर यहां भगवान की अहेतु की भक्ति में लगे हुए, तब उसको लगता नहीं ये बेकार है। तो ऐसे व्यक्ति से जब धन नहीं मांगा जाता तो भक्त लोग पूछते हैं जो आते हैं, प्रभु जी वो देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, इसने ये समर्पण किया, इसने ये समर्पित किया, इसने इतना समय समर्पित किया, ये झाड़ू लगा रहा है, ये भगवान की सेवा कर रहा है, तो कहता मैं क्या करूं। फिर पूछता है लोगों से मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मैं क्या समर्पित कर सकता हूं। तो ये समर्पण चाहिए भगवान को। और हमारे साथ क्या है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे पास हो, सब कुछ हम अपने हाथ में लगा कर रखें, जकड़ के रखें, फिर नहीं हो सकता, समर्पण करना पड़ेगा भगवान को। इसलिए जो धन हम लोग कमाते हैं और वो धन का अगर हमको, क्योंकि हमारे कर्मों का फल है वो, और उस कर्मों को फल को अगर हमने बचा कर रखा संजो कर रखा तो केवल नुकसान करेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आप सुंदर सा मकान बनाए लेकिन छत पर नाली ना बनाए, छत पर पानी की निकासी का नाली ने बनाएंगे बरसात का पानी इकट्ठा होगा और आपके सुंदर महल को भी क्या कर देगा, सारा का सारा सीलन शुरू हो जाएगी, आपके घर में सुंदर सुंदर सीनरी बनने लग जाएगी, ग्रीन है ना, टेक्सचर लगेगा, हर जगह टेक्सचर क्या हुआ है, पपड़ियां निकलने लग जाएंगे बाहर, है ना, आप उसमें 2-3 लाइट लगा दीजिए वैसे अलग से कि वो सुंदर लगने लग जाए, बट इतना सीलन हो जाएगी, बदबूदार मकान, भूत प्रेत आने लग जाएंगे, दूषित जगह पर आते हैं वो लोग, आपको पता नहीं है आपने सोफा 4 का बनाया, 4 और बैठे हुए उस पर, आपको पता नहीं आप किसी की गोदी पे बैठे हो या कोई आपकी गोदी पे बैठा है, कुछ पता नहीं है, इतनी गंदगी है घर के अंदर। क्यों गंदगी है, क्योंकि जो धन इकट्ठा किया था जो पैसा इकट्ठा किया था उसकी निकासी, वो पानी की निकासी नहीं हो रही है ऊपर से, बरसात का पानी रोकना चाहता है कोई छत पर, जो बरसात ही नहीं आ रही प्रभु जी इसलिए ठीक है। अरे तो टैंकी खाली कर लो, पानी ले आओ, तो टैंक में भी तो जो पानी है वो भी तो हमारे संजोए कर्मों का फल है। अगर टैंक खोल दिया तो सारी सीलन होगी और सारी हमारा घर खराब करेगा। इसलिए जिस तरह से धन आता है उस तरह से जाना भी चाहिए। एक व्यक्ति सुबह शाम पूजा करता रहा शिवजी भगवान की, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, बहुत तपस्या करी। शिवजी ने स्वप्न में कहा जाओ मेरे भक्त के पास वृंदावन में, उनके पास जाओ, उनका नाम है सनातन गोस्वामी, एड्रेस दिया रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 425, एड्रेस भी दिया, जाओ वृंदावन में मिलेंगे। गए नाश्ता कूदता गया कि शिवजी ने बोला है जाऊंगा, सबसे पूछा सर कहां है सनातन गोस्वामी जी, कहते उधर जाइए मिलिए उनसे। वो मिले, प्रणाम किया और सनातन गोस्वामी जी क्या कर रहे थे उस समय, नोट नहीं गिन रहे थे, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये कर रहे थे। जब उनका ध्यान बूटा तो देखा सामने व्यक्ति बैठा है, कहते भगवान स्वप्न आया था, आपका एड्रेस बताया है और उन्होंने बोला तुम्हारे पास बहुत बहुमूल्य चीज है और आप मुझे दे सकते हो, मैंने कितनी तपस्या करी और आज जाके एड्रेस मिला है प्लीज। कहते तुम्हें धन चाहिए, कहते हां जी, कहते जाओ वो डस्टबिन पड़ा है यूज मी, उसमें देखो वहां मिलेगा धन। वहां गए, ढक्कन खोला, कागज हटाए, क्या देखा, इतना बड़ा पारस का पत्थर। पारस पत्थर मतलब अगर किसी भी लोहे पर लगा दें तो उसको सोना बना देता है, बताओ सोना बनाने की मशीन मिल गई। मोर की तरह नाचने लगा, बहुत धन्यवाद किया, पांच अष्टांग प्रणाम किए, धन्यवाद किया और चला गया। आगे चलते चलते धन बनाऊंगा, सोना बनाऊंगा, इतने का बेचूंगा, इतने का रेट होगा। अचानक दिमाग में आया, कहते भैया चीज तो बहुत बहुमूल्य है, उस फकीर ने मुझे दे भी दी लेकिन उन्होंने कूड़ेदान में क्यों रखा हुआ था इसको, इसका मतलब क्या है, इनके पास पारस पत्थर बनाने का भी पत्थर है लगता है, इससे भी बहुमूल्य बनाने की कोई चीज है। तो वापस आ गया वो, कहते महाराज हरे कृष्णा, फिर से वापस। कहते बोलो अब क्या चाहिए, कहते मैंने कहा था कि शिवजी ने कहा आपके पास बहुत बहुमूल्य चीज है, तो क्या ये बहुमूल्य, कहते नहीं इससे भी बहुमूल्य। हाँ तो वो चाहिए ना, ऐसे टरका दिया आपने मुझे खाली ये देकर। कहते अगर वो चाहिए तो पहले इस पारस पत्थर को क्या करो, इसको फेंक कराओ, समुद्र में डाल के आना, नदी में डाल के आओ, समुद्र में डाल के आओ, और फिर मैं आपको इससे बड़ी चीज दूंगा। बड़ी तेज भागता हुआ गया, फेंक क्या पत्थर, वापस आया, हाँ कहां है। उन्होंने माला की थैली उठाई दूसरी काउंटर के साथ, अंदर बेड्स एक कागज दिया, ये पढ़ो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर, ये एक बार जपना और ये 108 मन की माला है, घुमाते रहो गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक धाम का जो धन है हरि नाम संकीर्तन वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, लो इसको जपो, इससे बहुमूल्य कुछ नहीं है। तो उसको समझ आ गया और उसने क्या किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा धन है जितना मर्जी इस्तेमाल करो खत्म नहीं होता, जिसको भी टच करो पारस बन जाता है, वो दूसरे को टच करता है वो पारस बन जाता है। शिला प्रभुपाद जी ने कर दिखाया, शिला प्रभुपाद देखी, इन्होंने सोना नहीं बनाया, इन्होंने पारस पत्थर बनाया, इन्होंने जिसको भी छुआ वो भी प्रचारक बन गया, जो प्रचार नहीं कर रहा वो भी प्रचारक है, धोती पहन के जा रहा तो भी प्रचारक है, कंठी पहन के जा रहा तो भी प्रचारक है, तिलक लगा के जा रहा है तो भी प्रचारक है। एक बार मेरे अपना ही प्रसंग सुनाता हूं, एक बार मैं बाइक पर जा रहा था और माथे पर तिलक था, गले में कंठी थी, हेलमेट जो पहना था उस पर भी तिलक था लेकिन वो पहना नहीं हुआ था, हेलमेट नीचे टांगा हुआ था। तो अचानक क्या हुआ, देखा पुलिस वाले खड़े सामने, ट्रैफिक वाले, तो मैंने कहा अरे बाप 100-200 रुपए मांगेंगे, तो मैंने बाइक को धीरे करी, मैंने पहले हेलमेट पहना फिर चलाई, उसने रोक लिया, सर आ जाओ, मैंने देख लिया था। कहते साइड, कहते पहले तो ये बताओ ये आपके नाक पर तिलक क्या लगा है और ये हेलमेट पे तिलक क्या है। मैंने कहा एक काम करो थोड़ा और साइड में आ जाओ, ये एक लंबी कहानी है। तो फिर उसको पूरा तिलक का मतलब बताया। तो कहने का मतलब है कि पारस पत्थर बनाया प्रभुपाद जी ने, ऐसा पारस पत्थर बनाया कि जो इसको अपने जीवन में उतारेगा, इस भक्ति को, हरि नाम को, वो एक प्रचारक बन जाएगा। वो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है, और जो मुंह से बोलकर प्रचार कर रहे हैं वो तो और भी अच्छा है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो है यहां पर प्रचारक बना दिया प्रभुपाद जी ने। बताइए सनातन धर्म इस जगह पर, इस भारत भूमि पर सनातन धर्म प्रकट हुआ है ना। यहां पर गीता आई, सब कुछ आया, लेकिन दुर्भाग्य है दिया तले अंधेरा। पूरे विश्व को प्रकाश कर रहे हैं लेकिन नीचे छाया है, नीचे अंधेरा है। इस संसार में, इस भारतवर्ष में इतना गहन ज्ञान, इतना सुंदर फिलॉसफी, टॉप मोस्ट गॉड ब्यूटीफुल, टॉप क्या बोल सकते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल भगवान हमारे पास है, सुंदर एक्टिविटीज के साथ बेस्ट प्रसाद हमारे पास है, बढ़िया डिवोटीज हमारे पास है, हरे कृष्ण टॉन्स हमारे पास है, लोग गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, हर जगह कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए भारत में क्या है, यहां पर अभी 33 करोड़ देवी देवताओं के जंजाल से निकल पाया व्यक्ति बाहर। नहीं हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो ये पशु पूज रहे हैं, घर में ही सनातन धर्म मंदिर खोल के रखा है 33 करोड़। और साथ में वो लोग नए जो अभी अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए भगवान के रूप में, उनकी भी फोटो है, उनके नाम के बीच में या आगे पीछे भगवान का नाम लगा दिया, ओम समथिंग समथिंग, ओम समथिंग समथिंग, राम समथिंग समथिंग। अरे भाई बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने देश का, धर्म के विषय में मालूम नहीं, गीता कभी खोली नहीं, जो मार्केट में नहीं इंट्रोड्यूस हुआ उस चीज को अपना लिया। हर एक व्यक्ति को बस चाहिए धन, उस धन का कोई भी पूरा करता हो, कहीं पर भी मैं जाऊं बस मेरी वो इच्छा पूरी होनी चाहिए, जहां वो इच्छा पूरी हो गई वो उसका बाप है, वो उसका भगवान है, क्या धर्म पालन करेंगे। फिर ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं कृष्ण ही भगवान क्यों, इन्हीं को क्यों माने। अरे बाबा तुम धर्म पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पता चलेगा भगवान कह रहे हैं रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप होता हूं, नाम है कृष्णा। भगवत गीता में लिखा है सर्व योनिषु कौन्तेया अहम् बीजा प्रदा पिता, पर सारी योनियों में बीज देने वाला पिता मैं हूं। लेकिन हमें नहीं पता, हम पढ़े लक्ष्मी के पीछे, चंचला लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं आएंगी, थप्पड़ मारकर जाएंगी, जीवन भर उद्वेगित रहेगा मन, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, धन इकट्ठा करने में समस्या, धन को गिनने में समस्या, दूसरे बचाने में समस्या। सरकार ने नियम लगा दिया अगर 30 सितंबर तक नहीं जमा कराया तो 10 साल के लिए अंदर जाओगे, इसलिए अगर 2 नंबर का है भी तो या तो सरेंडर कर दो या रोहिणी मंदिर के लिए दे दो। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, ताली बजा के थैंक हो, थैंक यू प्रभु जी। अरे काम करना है, एग्जीक्यूशन में होना चाहिए, निकालो पुराने अलमारियों को, तिजोरियों को खोलो और नोट में से मिट्टी निकालो। कई नोट तो चल भी नहीं रहे होंगे, सरकार ने बदल दिए, बैंक में जमा नहीं करा सकते 10-20 हजार से ऊपर। एक ट्रांजेक्शन करो तो घर में आ जाएंगे, सर ये ट्रांजेक्शन पैन नंबर चाहिए आपका, इसलिए भगवान की हुंडी में डालिए, नो प्रॉब्लम, या हमारे से संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे कि भगवान का धन। देखिए थोड़ा सा अगर धन दे दोगे, गवर्नमेंट कह रही है 30% हमें दो, 70 आप लो। हमारे पास आए दिन फोन आ रहे हैं लोगों के इधर उधर से, लोग पूछते हैं सर कुछ करोड़ों में रुपया है, अगर हम आपको दे दें आप हमें कितना दोगे। मैं क्या मंदिर वालों से मांगता है बदतमीज, यहां देकर वापिस मांगता है। आए दिन फोन आ रहे हैं, आए दिन लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं, कहते हैं सर अगर 20 करोड़ देंगे तो हमें कितना दोगे। तुम्हें 20 कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें भी प्रसाद देंगे, तुम्हारे जीवन का ठेका लेंगे, तुम्हें कमरा दे देंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रख लेंगे, लाओ 20 करोड़, खाने पीने की सिक्योरिटी कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल भी करा देंगे, लाओ और क्या चाहिए जीवन में, एक गाड़ी भी दे देंगे, पेट्रोल जीवन भर का दे देंगे, और बताओ यही तो चाहिए जीवन में, क्या चाहिए और क्या करना भाई। तो लोग विचलित हैं, परेशान है, दुखी है, पहले तो कमाने में इतनी टेंशन, चोरियां करी, रिश्वत ली, इधर से मारा उधर से मारा, आज इतना इकट्ठा हो गया संभालने में मुश्किल, प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ा दिए दुनिया में, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, कहीं तो लगाना है। गवर्नमेंट ने सर्कल रेट बढ़ा दिया, ट्रांजेक्शन हो नहीं सकती, लोग फंसे पड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक चिंता में पसीना, क्या करें, कहां लगाएं, कहां जाएं, किसको दें, कहां क्या करें, कैसे वापस आएगा, व्हाइट कैसे करें, सारे चार्टेड अकाउंटेंट बढ़िया कमा रहे हैं आजकल, उनको स्कीम बता बताकर। लेकिन गवर्नमेंट की नजर सबके ऊपर, कहीं भी इधर उधर ट्रांजेक्शन होते नजर आई तो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि हमें भी लक्ष्मी की आवश्यकता है, लेकिन नारायण के साथ। अगर लक्ष्मी को अकेले पूजेंगे तो कोई फायदा नहीं है, रावण वाला हश्र होने वाला है, जो हमने सोने का महल बनाया गांधी के नोटों का वो सब ढह जाएगा। इसलिए जो असली धन है वो इकट्ठा करना है। हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में श्रीमती राधा रानी भी है जिसमें सारी लक्ष्मियां इंक्लूडेड है, और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी हैं जिसमें सारे विष्णु अवतार इंक्लूडेड हैं। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये धन इकट्ठा करना है, ये जितना करेंगे इसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई रिबेट विबेट का चक्कर नहीं है, इस धन को इकट्ठा करो, कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी, कोई स्लैब चेंज नहीं हो रहे सरकार के द्वारा, इसको जितना इकट्ठा कर सकते करो। और अगले दिन आखिर में स्टैंप लगेगा, ओके टेस्टेड चेक, सेंड इन गोलोक बैक टू गॉडहेड। हरि बोल, हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है? यस पूछिए।
हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। प्रभु जी आपने जैसे बताया था कि कृष्ण के जो एक्सपेंशन है, जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो कृष्ण अपने विस्तार करते हैं, तो इसको मतलब थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ अपने लिए कि जैसे कि कर्णदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु हुए और फिर उनसे जो है शिरोदक्षाय विष्णु हुए, तो एट द टाइम ऑफ एनिलिएशन मतलब प्रलय के समय जैसे ब्रह्मा शिव, और तो फिर ये गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्ष विष्णु का क्या होता है?
जब भगवान पूर्ण प्रलय करते हैं तो उसमें महाविष्णु की ही नाभि में सब कुछ, जितने एक्सपेंशन है, जितना मटेरियल क्रिएशन है, उस सारा भगवान के नाभि में चला जाता है। विष्णु ऑल विष्णु ऑल्सो शिवा ऑल्सो। और ये जो महाविष्णु है ये फिर एक छोटे से बाल रूप के कृष्ण रूप में होते हैं, और एक पत्ते पर सारा फ्लोट कर रहा होता है तो उसमें आकर अपना अंगूठा चूसते रहते हैं, कई बार फोटो देखा होगा आपने, तो ये महाविष्णु है, छोटे मोटे विष्णु मतलब कृष्ण है। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका, श्रील प्रभुपाद की। गीताय गौर प्रेमानंदे।